Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग एक बहुत ही सुंदर सी चीज है। आप सब जानते होंगे, किसी ने एक वाक्य में कह दिया है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग नहीं कर पाते। एक बार पिता पुत्र बाजार से आ रहे थे, उनके साथ उनका गधा भी था। गधे को वो भी साथ चला रहे थे और दोनों भी पैदल चले आ रहे थे। अब कुछ लोगों ने देखा, कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा साथ है, इसके ऊपर बैठ के इनको चलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। अब उनको लगा कि हाँ भी बात तो सही है, चलो दोनों गधे पे बैठ गए, चलने लगे। थोड़ी दूरी तक वो गए तो कुछ लोग कहने लगे कि अरे कैसे निर्दयी लोग हैं बेचारे गधे पे, दोनों ये हट्टे कट्टे लोग सवार हो गए हैं, गधे की कोई भी चिंता नहीं है इनको। अब पिताजी उतर गए नीचे, बेटे को बोला कि चलो तुम चलो। अब थोड़ी देर आगे गए तो अब कुछ लोग कहने लगे कि कैसा बेटा है, पिताजी चल रहे हैं और ये निर्लज्ज होके गधे पे बैठा हुआ है। अब बेटा नीचे उतर गया, पिताजी बैठ गए कि चलो कोई तो बैठे। तो अब पिताजी जब चलने लगे, कुछ देर और आगे बढ़े तो लोगों कहने लगे कि देखो कैसा पिताजी है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद ही उस पे बैठ के चल रहा है। तो अब उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, दोनों ने ऐसा किया कि गधे को ही अपने कंधे पे उठा लिया और चलने लगे। तो मित्रों, कहने का भाव ये है कि संसार का ये एक वो मर्म सा बन गया है, एक कहें कि रीति रिवाज सी बन गई है कि कुछ भी करो लोग तो कहते ही हैं, अच्छा करो या बुरा करो। लेकिन जब कल भी जैसे हमारी बात हो रही थी कि यदि हम सत्य पथ पे चलना चाहते हैं तो भी बहुत सारे लोग कई प्रकार की बातें तो कहते ही हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को इस रास्ते पर अवश्य लेके चलना चाहिए। क्योंकि बात वही आ जाती है कि यदि लोगों के कहने पे हम चलते रहेंगे तो शायद जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ठीक है, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम कहना है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी इच्छा और लग्न के आधार पे सत्य की ओर अवश्य बढ़ूं, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन मेरा है, मुझे ईश्वर के नजदीक पहुंचना है, मुझे समाज और संसार को कुछ देकर जाना है। तो ऐसी थोड़ी सी यदि हम दृढ़ता रखते हैं तो लोगों की बातों को पीछे करते हुए हम एक नए रास्ते पे चल पाते हैं, बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। इसीलिए लगातार हमारी चर्चा हो रही है कि कैसे तप को हम और गहन करें, कैसे एक सत्य की ओर हम और बढ़ें और कैसे हम परमात्मा की निकटता का अनुभव करें। आइए भ्राता जी के अभिनंदन के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस पे आपकी प्रतिक्रिया?
मैं दोनों बातें सोच रहा था। कभी कभी लोग अच्छे मार्ग पे चलने वालों के लिए ज्यादा बोलते हैं और आजकल जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनको साथ देते हैं।
ये कलयुग की रीति नीति हो गई,
कलयुग का प्रभाव हो गया। और आजकल के युवक तो किसी की परवाह नहीं करते, जिसको जो कहना कहो, हमें तो वही करना है जो हम करना चाहते हैं, ऐसा भी बहुत कुछ हो गया है। लेकिन मनुष्य को समझदार तो होना ही चाहिए। ठीक है, जीवन में एक बैलेंस आना चाहिए, लेकिन जहाँ रही बात ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों की, तो ईश्वरीय मार्ग पे चलने में, क्योंकि हमारी भलाई भलाई है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ईश्वरीय मार्ग पे चल रहा है, माँ बाप विरोध कर रहे हैं, वो उन्हें कहता है, पूछता है कि आखिर आप विरोध कर क्यों रहे हो, क्या मैं किसी गलत मार्ग पे जा रहा हूँ, आप चल के देख लो। मैंने यदि अपना खान पान शुद्ध किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग नॉन वेज खा रहे हैं, युवक शराब पी रहे हैं, मैंने एक पवित्र मार्ग पे कदम रखा, आखिर आप विरोध क्यों करते हो। समझदार लोग विरोध की बजाय सहयोग करने लगते हैं, परंतु ये ह्यूमन नेचर है कि वो कुछ ना कुछ बोलता अवश्य है। तो हमें एक सत्य मार्ग जो महसूस हो गया, जिसको हमने अच्छी तरह परख लिया, उस पर चलना ही है, क्योंकि उसमें हमारा कल्याण है। मुझे एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है। दो युवा वैज्ञानिकों ने जहाज बनाया पानी का, बिजली से चलने वाला। पहले ये नाव जैसी होती थी, बड़ी बड़ी वो पर्दे जैसे लगाते थे उनमें, हवा को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए। उन्होंने इंजन जोड़ दिया और भाई एक अच्छा डेमो रखा कि आज दिखाएंगे कि भाई अब इंजन से सागर में बड़ा एक जहाज चलेगा। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। अब उनके साथी कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी खड़े थे। वो कहते थे वो आपस में बात कर रहे थे, ये नाव चलेगी नहीं, देख लेना फेल हो जाएगी। अब वो बेचारे दोनों छोटी नाव से उस अपने बड़े नाव पे जो जहाज जैसा बना दिया था चढ़े और उन्होंने स्टार्ट किया और चल दीजिए वो तो। अब सबने ताली बजाई, अब वो एक दूसरे को देखने लगे वैज्ञानिक जो ईर्ष्या कर रहे थे। अब क्या कहें, उन्होंने बोला फिर एक दो ने कि अच्छा चल तो दी लेकिन रुकेगी नहीं। अब नाव चली,
मतलब चला कहना जरूरी है,
घूम घाम के किलोमीटर वापिस आके वहीं रुक गया
जी,
वाह वाह हो गई। तो एक्चुअली जो सत्य है, जिसमें हमें विश्वास है, जिसमें हमें सफलता मिल रही है, हमें दूसरों की ईर्ष्या द्वेष से, उनके शब्दों से अपने कदमों को रोक नहीं देना चाहिए, अन्यथा मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत यूजफुल इन्वेंशन की हैं, जिसके कारण आज संसार जगमगा रहा है। ऐसे लोग हुए जिनके कारण घर घर में सुखों की बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं, जरूर उन्हें भी असफलता मिली होगी, लोगों ने उन्हें भी कहा होगा क्या टाइम वेस्ट कर रहे ये, इसे तो इधर काम करते तो अच्छा होता, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे, उन्होंने किसी की चिंता नहीं की। तो चिंता हमें करनी चाहिए जब हम गलत मार्ग पर हों, लेकिन अगर हम एक जन कल्याणकारी मार्ग पे चल रहे हैं, अगर हम आत्म कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर हम श्रेष्ठ आत्मिक शुद्धि के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए परमपिता के शब्दों पर।
बिल्कुल, लेकिन बता जी, ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोगों की बातें बहुत असर कर जाती हैं और लोग सोचते हैं कि इतना सुनने उनने की बजाय छोड़ो, इस रास्ते को छोड़ के जहाँ पे हो वहीं रहो, तो ये लोगों की बातें कई बार बहुत ज्यादा प्रभाव डाल जाती हैं और उन्हीं के प्रभाव के अनुसार हम अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। यहाँ क्या कहेंगे?
देखिए, जो जिस व्यक्ति को कुछ महान कार्य करना है उस पर तो ये संसार के लोगों की बातें प्रभाव नहीं डालेंगी, लेकिन जो कमजोर मन वाले हैं, जो दूसरों की गाइडेंस पे चलने वाले हैं, जिनके पास अपनी विवेक शक्ति बहुत कम है, वो तो दूसरों की बात सुन के रुक जाते हैं, लेकिन रुकना किसी भी तरह से यथार्थ नहीं है।
जी जी पिता जी, ज्यादातर लोग यदि देखा जाए 100 में से 90% या उससे भी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहाँ सब कुछ ठीक ठीक स्मूथली चल रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो ये शक्ति, ये ताकत, ये क्षमता कैसे आए कि हम कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें और नई चीज को ट्राई करें?
इसी की जरूरत है। कंफर्ट जोन में चलना, आराम से रहना, आराम से सोना, आराम से खाना, ये ठीक है, ये भी जीवन है, लेकिन जिसको कुछ करना है उसे तो इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसे तो कांटों के पथ पर चलना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी भी यदि यही सोचते, अरे क्या चक्कर में जाना है, क्या जरूरत है इतनी बड़ी सत्ता से जिसके राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता, मैं उनसे टक्कर लूं, छोड़ो। लेकिन नहीं, उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सोचते, बहुत साहूकार थे ये लोग, आनंद पूर्वक जी रहे थे, खादी पहन ली। हमारे बाबा को ही देख लीजिए, बहुत अच्छे जवाहरी, आनंद पूर्वक जीवन जी रहे, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, और ईश्वरीय पथ पर चलते ही गालियां मिलने लगी, लेकिन मार्ग को छोड़ा नहीं। तो वास्तव में जिसको कुछ महान कार्य करने हैं, जिसको संसार से हटकर कुछ विशेष काम करना है, संसार को जिसे कुछ देना है, उसे तो ये सब बातें सुननी पड़ेंगी और इस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आराम तल भी ये मनुष्य को विलासता की ओर ले चलती है, भौतिक साधनों में डुबो देती है, और ये अंततः पतन का ही कारण बनता है।
पता जी, कई बार एक विचार रहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि व्यक्ति सोचता है कि अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, चलने दिया जाए, शायद हम कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, और यदि हम वहाँ असफल हो गए तो लोग कहेंगे भी, और साथ ही हमारे जीवन का कम्फर्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो एक भय का भाव है, अनिश्चितता का भाव है, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों में रहता है।
नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, दूसरों के एग्जाम्पल उनके सामने होते हैं कि देखो उसने ऐसा किया, अपना भी गंवा दिया, वो भी प्राप्त नहीं हुआ, तो लोग थोड़े घबराते भी हैं, और ऐसी स्थिति आना संभव भी होती है, क्योंकि एक नूतन मार्ग पे कदम रखने से जहाँ अनुभव बहुत कम हो और मनुष्य उसमें सफल न हो, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ये जो ईश्वरीय मार्ग है, इसमें हमें भगवान का साथ मिल रहा है, इसमें वो हमारा सच्चा साथी और सहयोगी बन रहा है, कदम कदम पर उसका साथ है हमें। इसलिए इस मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक चलता है, अगर संपूर्ण विश्वास और भावनाओं के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी असफलता का प्रश्न होता ही नहीं है। लेकिन यदि कहीं थोड़ा बहुत होता भी है, तो उसे भी वो जो परमपिता है, जो मालिक है, जो समर्थ है, वो बहुत कुछ संभाल लेता है।
बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी परमात्मा के लिए हम गाते आए हैं, उनके लिए यदि हमने कोई मार्ग चुना है तो उनकी मदद ना मिले ऐसा तो लगता ही नहीं कि होगा। वैसे भी यदि हम किसी व्यक्ति के लिए भी कुछ करते हैं तो उस व्यक्ति की भी मदद तो हमें मिलती है, तो व्यक्ति यदि मदद करता है तो शायद परमात्मा न करें ऐसा तो असंभव ही है। दादा जी, हमारी चूंकि तपस्या पे चर्चा हो रही थी तो एक हमारे पास मेल आया है चंद्रकांत शर्मा जी का बनारस से, और ये कहते हैं कि यूएन ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है और ये विशेष भारत के पहल पर संभव हुआ है। अतः समूचे विश्व समुदाय की नजर अब भारत की ओर है कि योग दिवस आखिर है क्या और इससे हमें लाभ क्या है। अब तक शायद लोग योग का मतलब प्राणायाम और शारीरिक आसनों को ही मानते रहे हैं, लेकिन योग तो बहुत सूक्ष्म विषय है। इसे विश्व समुदाय के सामने लाने की आवश्यकता है ताकि भारत को सारा संसार विश्व गुरु के रूप में पुनः स्वीकार करे। यह कार्य मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका मूल विषय ही योग है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ब्रह्मा कुमारियां इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कुछ विशेष करने जा रही हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि भारत के प्राचीन योग को सारा संसार यथार्थ रूप से समझ सके। बनारस से चंद्रकांत शर्मा।
हाँ, देखिए अभी 21 जून का दिन आने वाला है
जी।
अभी समय है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसकी बहुत अच्छी पहल की है और स्वामी रामदेव जी बहुत समय से इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज थोड़ी सी भ्रम पैदा कर गई कि महर्षि पतंजलि ने जिस योग को सिखाया था मनुष्य को, उसके 8 अंग थे, 8 हिस्सों में उसको किया जाता था, 8 उसके स्टेप्स थे, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 पहले थे, ये शारीरिक
जी।
इसमें कुछ चीजों का, कुछ अच्छी धारणाओं का पालन भी होता था, उसमें ब्रह्मचर्य भी एक है, शुद्धि एक है, चोरी न करना, ये सब सुंदर धारणाएं भी उसमें थी। तो क्या हुआ, आज लोगों ने आसन और प्राणायाम को तो महत्व दिया क्योंकि उससे उन्हें शारीरिक लाभ हुआ, लेकिन ये जो यम नियम पहली धारणाएं थी सुंदर, जो जीवन से जुड़ी हुई धारणाएं थी, जिनको हम सरल भाषा में कहें नैतिक मूल्य, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वामी रामदेव जी के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हमारे यहाँ आने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बहुत सारे भाई बहने इस कार्य में उनको कोऑपरेट करते हैं। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि स्वामी जी को ये तो कहो कम से कम 10 नहीं तो हर व्यक्ति एक नियम तो अपनाए कोई। तो एक नियम अपनाने से भी ये जीवन में चरित्र बढ़ेगा, विचारों की शुद्धि बढ़ेगी। अगर कोई 10 के 10 नियम बनाए तो वो तो देवता बन सकता है। तो बाकी 4 जो नियम हैं वो हैं साधनाओं के, मन को स्थिर करने के, मन को शांत करने के। चलो एक आम व्यक्ति वो न भी कर पाए, लेकिन आजकल क्या हुआ कि केवल प्राणायाम को योग मान लिया गया। थोड़ी सी इनकम्प्लीट बात हो गई है। मैं कहूंगा हम सब इस पर करेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि राजयोग हमारा मुख्य विषय है और हम इसको संसार के हर धर्म के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हर धर्म के व्यक्ति के लिए है। गरीब अमीर, पढ़ा बिना पढ़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके लिए ये राजयोग। और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि हमारे सभी धर्मों के भाई बहने ये अच्छी तरह जान लें जो उनके धर्म ग्रंथों में करने को कहा गया है। अगर वो राजयोग का अभ्यास करने लगें तो उनके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि वो अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो कर पाएंगे और तब उनका जीवन धर्म का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए राजयोग को कोई ऐसा न समझे कि ये हिंदुओं के लिए है, ये अमुक संप्रदाय के लिए, ये सर्व के लिए है। तो मैं ये सबको कहूंगा, योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में भी आ चुकी है, यानी हमारा मिलन परमात्मा से, यानी दो चीजों का मिलन, ये योग कहलाता है। हम अपने को अपने परमपिता से जोड़ें, उससे अपना नाता जोड़ ले, वो हमारा है, हमने ये बात भुला दी है, हम उसको पहचान लें, वो क्या है, कौन है, कहाँ है, हमारा उससे कितना प्यार भरा नाता है, ये नाता जोड़ना तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम भी पूरी शक्ति के साथ इस दिवस को मनाएंगे और संसार को एक सुंदर संदेश देंगे कि सभी अपने परमपिता से जुड़ें। तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, ब्रेन हेल्दी हो। देखिए, तन हेल्दी होने से ही काम नहीं चलेगा। मन सुंदर, प्योरिफाइड माइंड, एक विशुद्ध मन, एक ऐसा मन जिसमें सुंदर विचारों का उदय हो, एक ऐसी बुद्धि जिसमें सद्विवेक भरा हो, एक ऐसा ब्रेन जो बहुत स्ट्रांग हो, जो हेल्थ को भी स्ट्रांग रखे। तो अगर प्राणायाम और राजयोग अभ्यास दोनों को जोड़ दिया जाए तो मनुष्य परफेक्ट हो सकता है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 21 जून को हम भी इंटरनेशनली मनाएंगे, क्योंकि हमारे सारे संसार में बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और UN में भी हमारा ऑफिस है, उनसे भी मिलकर हम इस क्षेत्र में एक सुंदर कार्यक्रम करेंगे।
व्रत जी, ये जो योग की बात चल रही है, विस्तार से तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, फिलहाल मैं अभी के लिए जानना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो प्रयास है इस दिशा में, क्योंकि विश्व स्तर पे बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो कुछ विशेष विचार है कि हाँ ये चीज हम करें ताकि विश्वव्यापक जो बात है कि योग को हम पहुंचा सकें वो हो सके।
देखिए, अभी हमारी एनुअल मीटिंग होती है, वो मार्च में होगी और उसमें इस विषय को लिया जाएगा, इस पे चर्चा होगी और एक सुंदर प्रोग्राम इस संदर्भ में बनाया जाएगा।
चलिए व्रता जी, हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा कि योग को सारे संसार तक किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियां पहुंचाती हैं, क्योंकि जैसे यहाँ सभी एक सुंदर अनुभव कर रहे हैं वही अनुभव सारे विश्व समुदाय के लोग कर पाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। व्रता जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है वो योगी राज नारायण जी का है, जो पोखरा नेपाल से लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रणाम। तो भ्राता जी हैं, आपने भ्राता जी को डॉक्टर साहब कहा है, तो भ्राता जी डॉक्टर तो नहीं है वैसे डॉक्टर, लेकिन हाँ आध्यात्मिक डॉक्टर जरूर हैं। आपका शुक्रिया, आपने डॉक्टर साहब कह के संबोधित किया। ये कहते हैं भ्राता जी कि कृपया आप अपने अनुभवों की तकनीक के बारे में हमें बताएं कि आप जैसे अनुभव करते हैं वैसे ही योग में हम कैसे अनुभव करें। तो बड़ा ही गहरा सा प्रश्न इन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछा है।
देखिए, योग एक ऐसी साधना है जिसका लगातार अभ्यास किया जाता है और अपने मन को सेट कर लिया जाता है, हम ये करेंगे हम ये नहीं करेंगे। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हम अपने अनुभवों की चर्चा पीछे बहुत लंबी कर चुके हैं, फिर भी इन्होंने पूछा है, तो सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग करना
जी।
जो मैंने किया वो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। सोने से पहले बहुत अच्छा योग करना, मैं तो 1 घंटा करता रहा, 16 साल मैंने लगातार, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर ही हो गया था तो मैं फिर घूम नहीं सकता था, 2 साल लग गए थे ठीक होने में, तब मेरा वो छूटा, अन्यथा 1 घंटा सोने से पहले बहुत अच्छा योग अभ्यास, सारा दिन कुछ डिसिप्लिन्स का पालन करते हुए बीच बीच में अच्छे अच्छे योग अभ्यास। मैंने अपने बहुत अच्छे चार्ट बनाए, आवरली चार्ट, जिसमें मुझे सबसे अधिक फायदा हुआ जीवन में, हर घंटे में एक नई प्रैक्टिस। तो इस तरह से एक अच्छी मेहनत की जीवन में। योग साधना एक ऐसी चीज है, इसमें अपने मन को साधने की मेहनत की जाती है, तो वो मेहनत हर साधक को करनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ जो एक बहुत सुंदर बात रही, मैं एक लक्ष्य को लेकर चलता था कि मुझे 1 साल दिसंबर एंड तक इस वर्ष योग की स्थिति को इतने घंटे तक पहुंचाना है, फिर मैं उसकी एक सुंदर प्लानिंग करता था, उस प्लानिंग को पूर्ण करने के लिए मैंने एक प्रतिज्ञाएं करता था, तो उससे वो लक्ष्य सहज मिल जाता था। इसलिए योग के मार्ग में मेहनत करें। दूसरी चीज ये है जो मैंने बहुत ही केयरफुल्ली अपने जीवन में अपनाई और मैं सबको वही राय देता हूं, व्यर्थ से बचें। योग के मार्ग पे चलने वालों के लिए हमारी दादी जानकी कहा करती थी, हमने बचपन में ही सुन लिया था उनसे, कान और आंखें बंद करके संसार में जियो, इस संसार में तुम ऐसे जियो तुम्हारा कोई नहीं और ऐसे जियो सब तुम्हारे हैं। ये 2 बात उनकी मुझे बहुत प्रिय लगती थी, कोई नहीं और सब तुम्हारे हैं, बड़ी गहन फिलोसॉफी है ये
जी।
तो ये चीजें अपनाने से और स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखने का लक्ष्य, सुनना ही नहीं है व्यर्थ, उन दिनों में 40-40 दिन के मौन किया करता था। हमारे यज्ञ में ये एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। मंडे को थर्सडे को मौन रखा जाता था, वो हम रखते थे। कभी कभी एक वीक के लिए रख लेते थे। जनवरी मास हमारा योग तपस्या का मार्ग होता था। 73 से ये चालू हुआ और पूरा मास हमने मौन रखा। तो मौन का प्रभाव, अच्छी साधनाओं का प्रभाव, स्वयं को व्यर्थ से मुक्त। उन दिनों न टीवी थी, न मोबाइल थे, न इंटरनेट था। ये अब से 45 साल पहले की बात है। तो इन सब से भी हम मुक्त थे और हमारे इस ईश्वरीय यज्ञ में ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें मानी जाती थी। टीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्या गंदगी इसमें आती रहती है ये। वो तो जब से रामायण सीरियल हुई तो लोगों को आकर्षण हुआ कि बहुत अच्छी चीजें भी आ रही हैं, तो लोगों ने देखनी और लेनी शुरू की, नियम अपने लिए बनाए। उसके कारण योग बहुत अच्छा होने लगा। तो जिनको योग की सुंदर अनुभूतियां करनी है उनको ऐसे अपने डिसिप्लिन बनाने चाहिए और निरंतर एक अभ्यास की ओर चलना चाहिए। और मैं जोड़ दूं, बिना त्याग के तपस्या नहीं होती। त्याग घर का नहीं, त्याग भोजन का नहीं, त्याग नींद का नहीं, त्याग उन व्यर्थ की चीजों का जो हमारे मन को विचलित करती हैं, बस उनका त्याग करेंगे तो मन की एकाग्रता में बहुत मदद मिलेगी और तपस्या सुंदर होगी।
जी जी प्रता जी, हरेक का मुझे लगता है कि एक चाहना रहती है कि हमें भी अच्छे से अच्छा अनुभव हो, चाहे शुरुआत में, चाहे वो साधना के पथ पे चल रहे हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ चीजें तो आपने बता दी हैं कि हाँ, ये चीजें आपने अपने अनुभव में लाई थी। कुछ और विशेष ऐसी बातें हो सकती हैं कि आए साधना के पथ पे या बैठे भी साधना में तुरंत हमें सुंदर से सुंदर अनुभव प्राप्त हो।
देखिए, हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग अलग है, हर एक की बुद्धि का लेवल अलग अलग है। किसका पहला जीवन, इस ज्ञान में आने से पहला जीवन कैसा बीता, कैसा संग उसका रहा, कैसा उसका अध्ययन रहा, उसने अपने बुद्धि के कोष में क्या क्या भर लिया, निगेटिव और पॉजिटिव, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसकी प्योरिटी कैसी थी या किसी का जीवन गंदगी में बीता है। तो अगर जीवन स्वच्छ बीता है तो बस साधनाएं शुरू करें और जैसे मैंने कहा, व्यर्थ से जरा मुक्त रहें, सवेरे उठें। मैं ये नहीं कहूँगा आप 2 बजे उठने लगो, आप 4 बजे ही उठें, अच्छी तरह से चिंतन करें। कमेंट्रीज हमारी हैं, बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार हमारे पास है, उसकी स्टडी करें और 4 से 8 के समय को ज्ञान और योग की साधना में व्यतीत करें। समझ लें ये स्पेशल टाइम हमें मिला है, इसको हमें सफल करना है तो अनुभव प्रारंभ अवश्य होंगे, पहले दिन से होंगे।
बिल्कुल, मतलब कुछ करना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता तो है कि मुझे अच्छे से अच्छा अनुभव हो, लेकिन वो कुछ इस प्रकार की त्याग की जो बात है शायद वो त्याग नहीं करता है।
कई लोग ऐसे भी हैं कि समय नहीं देते, वो सोचते हैं बस सारा दिन काम कर लिया, चलो रात को अब योग में बैठते हैं। अब रात को योग अभ्यास में बैठेंगे तो सारे दिन के थॉट्स उसको विचलित करेंगे ही ना। इसलिए बीच बीच में अपने को समय दें, 10-10 मिनट, जिस चीज को पाने की हमें तीव्र उत्कंठा हो उसके लिए हम 10-10 मिनट 4-5 बार टाइम दे दें, मुश्किल से 1 घंटा ही होगा। हम बहुत फ्रेश भी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा कामकाज भी अच्छा होगा, हम स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे और योग के मार्ग में बहुत सफल होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें हमें करने की आवश्यकता है यदि अच्छे अनुभव हमें करने हैं तो। सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज भी योग पे बड़ा ही सुंदर सा एक प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है और राजयोग के लिए तो कहा ही जाता रहा है। अब 21 जून तो खैर आने वाला है, जब आएगा बहुत सुंदर प्रयास ब्रह्मा कुमारियां करेंगे ही। भ्राता जी कह रहे थे कि जब वार्षिक मीटिंग होगी बहुत सुंदर, कोई ना कोई अच्छी प्लानिंग होगी ताकि सारे विश्व समुदाय तक ये बात पहुंचे। शुरू से ही ये बात मानी जाती रही है भारत के लिए कि भारत का प्राचीन राजयोग बहुत 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 महत्वपूर्ण रहा है। एक प्रकार से एक ऐसा सूत्र रहा है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है, या फिर ऐसा माना जाता रहा है कि राजयोग के माध्यम से सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है, जीवन में जो भी कामना है उसे पूर्ण किया जा सकता है, सत्य को जाना जा सकता है, परम सत्य के नजदीक पहुंचा जा सकता है और जीवन को सुख शांति समृद्धि से संपन्न किया जा सकता है। सोच सकते हैं, यही सारी चीजें तो व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में। और जिस राजयोग या योग की साधना के लिए व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर अपने महल को छोड़कर जंगलों में चला जाता था या हिमालय में चला जाता था, जरूर यहाँ जो प्राप्त नहीं हो सकता था वो उसे शायद योग से प्राप्त होता रहा होगा, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के चले जाते थे। अब लेकिन हमें सब कुछ छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने घर में रहते हुए ही, अपने व्यापार में रहते हुए, अपने कारोबार में रहते हुए राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं और ये सारी चीजें मुक्ति की, जीवन मुक्ति की, अमरत्व की, या सर्व समस्याओं से मुक्त रहने की, या जीवन में आनंद की, ये सारी प्राप्ति हम अपने घर में ही कर सकते हैं यदि राजयोग का सुंदर अभ्यास करें तो। तो कितनी सुंदर प्राप्ति हमें हो गई है ना। तो शुक्रिया पीस ऑफ माइंड चैनल का भी, आदरणीय भ्राता जी का भी, कि हमें घर बैठे कितनी सुंदर युक्तियां बता रहे हैं। बस आवश्यकता ये है हम इसे करते चलें, क्योंकि जब करेंगे तब हमें वो अनुभूति प्राप्त होगी और वो अनुभव सचमुच हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ते चलिए, सुंदर अनुभूति करते चलिए, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।